जादुई पिंजरे में कैद संजय, विजय, रघु और रवि बुरी तरह तड़प रहे थे। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े जख्म बन गए थे, जिनका दर्द उनके लिए असहनीय हो रहा था। दर्द के मारे वो चारों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से जंगल की धरती कांपने लगी। आकांक्षा उस कंपन से घबरा गई और डर के मारे रेवांश का हाथ पकड़ लिया। आजकल शिमला में कुछ ज्यादा ही अर्थक्वेक नहीं आ रहे क्या? और ये जंगल में इतना भयंकर शोर किस चीज का हो रहा है? तुम यहाँ कितने दिनों से कैद हो? कहीं यहाँ पर खतरनाक जानवर तो नहीं? प्लीज यहाँ से निकलने के लिए कुछ करो, इससे पहले कि वो हमें अपना शिकार बना ले, आकांक्षा ने घबराते हुए बोला। सही कहा आपने, जंगली जानवरों का ही शोर है, रिवांश ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ सहलाया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो इस तरफ नहीं आएंगे, हम यहाँ सुरक्षित हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? जानवरों का क्या भरोसा, वो तो कहीं भी आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर की हर एक चीज काफी रहस्यमयी लग रही है, पता नहीं तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो, आकांक्षा ने चारों तरफ देखते हुए बोला। उन चारों के चिल्लाने की आवाज बढ़ती जा रही थी, जिसे सुनकर आकांक्षा बहुत ज्यादा डर रही थी। अगर ये चारों ऐसे ही चिल्लाते रहे तो हम ज्यादा देर तक इनसे सच नहीं छुपा पाएंगे, हमें कुछ न कुछ करना होगा, रिवांश ने आकांक्षा की तरफ देखकर सोचा, जो कि डर के मारे कांप रही थी। रिवांश ने आकांक्षा को अपने वश में करने के लिए उसे पकड़कर अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी हरकत से वो गुस्सा हो गई और उसने रिवांश को खुद से दूर धकेला। ये क्या कर रहे थे तुम? देखो, भले ही हम दोनों जंगल में एक साथ फंस गए हैं, लेकिन तुम इस तरह सिचुएशन का एडवांटेज कैसे उठा सकते हो? इस वक्त हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ पर अंधेरा नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रुकती। तुमने जो ये किया है वो, आकांक्षा बोल रही थी। तभी रिवांश ने अपनी आंखों से ऊपर के पेड़ की लकड़ी को तोड़कर नीचे गिरा दिया, जिससे उसे लगा कि रिवांश ने उसे बचाने के लिए उसे करीब खींचा था। हम तो बस आपको बचाना चाहते थे, आप हमें गलत मत समझिए। अगर हम आपको नहीं खींचते तो ये लकड़ी आपके ऊपर गिर जाती और आप इससे बेहोश भी हो सकती थी, रिवांश ने झूठी सफाई दी। और तुम्हें इतने अंधेरे में सब कुछ साफ कैसे दिखाई दे गया, आकांक्षा ने गुस्से में पूछा। तो रिवांश ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। आकांक्षा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पास रिवांश पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन मुझसे थोड़ा दूर रहना, कहकर आकांक्षा आगे की तरफ चलने लगी। इस पर हमारे जादू का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ना तो हम इसका मन पढ़ पा रहे हैं और ना ही ये हमारे वश में आ रही है। लगता है अब तो उन चारों आवाज रोकने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, सोचते हुए अगले ही पल रिवांश वहां से हवा की तरह दौड़ते हुए उस पिंजरे के पास पहुंचा जहां पर वो चारों पिशाच कैद थे। बाहर निकालो हमें यहाँ से, तुम इस तरह हमें बंदी बनाकर नहीं रख सकते, रिवांश को देखकर रघु दर्द से चिल्लाया। रिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस पिंजरे को उठाकर वहां से दूर चल दिया। उसने अपना विशाल रूप धारण कर रखा था और सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि आकांक्षा को एहसास भी नहीं था कि रिवांश उसके साथ नहीं था। जंगल के दूसरे कोने पर जाकर रिवांश ने जमीन के अंदर अपने पैरों से जोर से एक बड़ा वार किया। एक ही वार में बड़ा सा गहरा गड्ढा बन गया। उसने उस पिंजरे को उस गड्ढे में डाल दिया। उस गड्ढे को फिर से बंद करके रिवांश आकांक्षा के पास वापस आ गया। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ अकेले पटर पटर बोलती रहूं और तुम कुछ जवाब ही ना दो, कुछ तो बोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी देर से अकेले चल रही हूँ, पिछले 10 मिनट से तुमने एक शब्द भी नहीं बोला, आकांक्षा थकने की वजह से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वो बस हम आपकी बातें सुन रहे थे, रिवांश ने उसके पास बैठते हुए जवाब दिया। आपकी जगह उस वक्त कोई और होता तो वो भी हमें गलत ही समझता। डोंट वरी, हम आपसे नाराज नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। क्या यहाँ ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो जंगली ना हो? ठीक है, हम कुछ लेकर आते हैं, लेकिन आप यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलिएगा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? जानते हो ना यहाँ बहुत खतरा है, ऐसे में तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ कैसे लेकर आओगे, आकांक्षा ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया। हम यहाँ काफी समय से हैं तो हमें यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी है। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर कुछ पेड़ हैं जिनके फल जंगली नहीं है। अगर थोड़ी ही दूरी पर है तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, आकांक्षा खड़ी होकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। आप थक गई होंगी, यहाँ आराम कीजिए, हम बस अभी लेकर आते हैं। वैसे भी हम यहाँ पर काफी दिनों से फंसे हुए हैं तो यहाँ के माहौल से थोड़ा बहुत परिचित हो गए हैं। ये जगह सुरक्षित है, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आएगा, हम बस अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आएंगे, रिवांश पलक झपकते ही जंगल के किनारे वाले कुछ पेड़ों पर से बहुत सारे फल तोड़कर ले आया। वो लगभग 2 से 3 मिनट में वापस आ गया तो उसे इतनी जल्दी वहाँ देखकर आकांक्षा ने हैरानी से पूछा, अरे तुम इतनी जल्दी आ भी गए? हाँ, बस पास में ही था, रिवांश ने मुस्कुराते हुए सभी फलों को उसे दे दिया। आकांक्षा जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगी तो रिवांश मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शाम के वक्त जानवी और राजवीर जी राजपुरोहित जी से मिलने कांगड़ा का मंदिर पहुंचे। वो मंदिर पहुंचे तब वहां संध्या आरती हो रही थी। राजवीर जी और जानवी पहले आरती में शामिल हुए और उसके बाद पंडित जी मिलने पहुंचे। प्रणाम पंडित जी, राजवीर जी ने हाथ जोड़कर कहा। वो हमें राजपुरोहित जी से मिलना था,
आज तो वो संध्या आरती में भी दिखाई नहीं दिए, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आरती में शामिल ना हो। पंडित जी ने उन्हें प्रसाद देते हुए कहा, हाँ श्रीमान, वैसे तो राजपुरोहित जी संध्या आरती के वक्त मंदिर के प्रांगण में ही रहते हैं, लेकिन आज ही किसी विशेष पूजा को संपन्न करवाने के लिए पास ही के गांव में गए हैं। क्या? लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी था, वो वापस कब तक आएंगे? पंडित जी की बात सुनकर जानवी का मुंह उतर गया। दद्दू, अब कैसे होगा? वो कल सुबह तक आ जाएंगे, आप तब तक मंदिर की धर्मशाला में रुक जाइए। कल जब वो वापस आएंगे तो मिल लीजिएगा, मैं शामू को कह देता हूँ, वो आपको वहाँ छोड़ आएगा। पंडित जी ने पास में खड़े इस आदमी को इशारे से बुलाकर कहा, शामू, इन श्रीमान जी और इनके साथ आई बच्ची को गेस्ट हाउस में कमरा दिला दो, ताकि इन्हें रुकने में कोई परेशानी ना हो। कल सुबह जब राजपुरोहित जी यहाँ वापस लौट आएंगे, तब आप उनसे बातचीत कर लीजिएगा, वहाँ आपके रहने के साथ खाने का भी प्रबंध हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद पंडित जी, चलो जानवी, गेस्ट हाउस में चलते हैं। एक राजपुरोहित जी से ही उम्मीद थी कि वो शायद कुछ कर सके, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है। ये मुसीबतें हैं कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, राजवीर जी ने निराश होकर कहा। हाँ दद्दू, मुसीबतें भी बिल्कुल पिंपल्स की तरह हैं, एक जाता नहीं कि उससे पहले दो चार और निकल आते हैं। उसकी बात सुनकर राजवीर जी के उदास चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तुम भी ना जानवी, उदाहरण तो अच्छा देती, मुसीबतों को पिंपल से कौन कंपेयर करता है? दद्दू, आपको नहीं पता, पिंपल्स किसी मुसीबत से कम नहीं होते। राजवीर जी जानवी के साथ धर्मशाला के कमरे में पहुंचे। अब उनकी एकमात्र उम्मीद राजपुरोहित जी थे, और वो यहाँ पर मौजूद नहीं होने के कारण उनके पास उनका इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में फल खाने के बाद आकांक्षा कुछ देर के लिए सो गई। सूरज ढल चुका था और वो दोनों अभी तक उसी पेड़ के नीचे बैठे थे।
आकांक्षा को फिर से भूख लगने की वजह से वो बचे हुए फल खा रही थी। तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? तुम्हें भूख नहीं लगी? ये लो, तुम भी कुछ फ्रूट्स खा लो, आगे हमें काफी दूर तक चलना होगा, क्या पता कुछ खाने को मिले या ना मिले। हाँ, और शिकार हमारे सामने बैठा है, लेकिन पहली बार किसी की जान लेने का मन नहीं हो रहा है, रेवांश ने सोचा। तुमने बोला था ना कि तुम यहाँ का रास्ता जानते हो? मुझे बाहर जाना है, मेरे घर वाले मेरी फिक्र कर रहे होंगे, क्या हम यहाँ से जल्द नहीं निकल सकते? आकांक्षा की बात का जवाब देने के बजाय रेवांश अपने मन में सोच रहा था, हम चाहें तो एक मिनट में आपको जंगल के बाहर फेंक दे, लेकिन फिर आपको हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके जवाब ना देने की वजह से आकांक्षा झुंझला उठी। उसने नाराज होकर बोला, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ, और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सामने वाले को बोलने का मौका ही कहाँ देती हैं। इतना बोलकर रेवांश फिर चुप हो गया। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी रेवांश को किसी की आहट सुनाई दी। उसे किसी इंसान के आसपास होने की खुशबू आ रही थी। लगता है कि हमारी भूख मिटाने का इंतजाम हो गया, रेवांश ने सोचा, कि तभी उसकी नज़र आकांक्षा की तरफ गई, जो कि उसकी सच्चाई से बेखबर थी। आप यहीं रहिएगा, हम अभी आते हैं बस, कहकर रेवांश वहां से हवा की तरह फुर हो गया। रेवांश खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसे सामने एक आदमी दिखाई दिया, जो कि बाकी लोगों की तरह गलती से जंगल में आ गया था। पता नहीं कैसे इस मनहूस जंगल में कदम पड़ गए, हे भगवान रक्षा करना, वो आदमी बड़बड़ाते हुए चल रहा था। तभी रेवांश ने उसके करीब आकर कहा, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं, आइए हम आपकी मदद करते हैं। उस आदमी ने रेवांश को धक्का देकर बोला, अरे जाओ, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से मदद लूंगा क्या मैं? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, अरे बहुत पैसे वाला आदमी हूँ मैं, तुम जैसे लुटेरों को अच्छे से जानता हूँ, अमीर आदमी देखा नहीं कि बस आ जाते हैं लूटने। रेवांश तेजी से फिर उसके पास आ गया, शायद आप नहीं जानते कि हम कौन हैं। रेवांश ने उसे आगे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, और उससे पहले ही उसकी गर्दन के पास आकर उसका सारा खून एक बार पी लिया। इस बार हम अपने शिकार से माफी नहीं मांगेंगे, आप जैसे लोग जो गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें जीने का भी कोई हक नहीं है, आपके खून की बदबू ही बता रही है कि आपने कितने मासूम लोगों के हक का खाया होगा। रेवांश वहां खड़ा था कि तभी अचानक उसके चेहरे पर टॉर्च की लाइट पड़ी। उस रोशनी में रेवांश के चेहरे पर खून लगा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर शैतानियत और आंखों में खून उतर आया था। मुंह पर रोशनी आने की वजह से रेवांश की आंखें चौधी आ गईं। वो उस रोशनी में साफ देख पाता कि तभी सामने से आवाज आई, तुम एक पिशाच हो। सामने आकांक्षा खड़ी थी। क्रमशः